हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बार बार आती दरवाजे की आवाज से अनंत एकदम से घबरा चुका था, क्योंकि उसकी पागल बीवी तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने वहीं से तेज आवाज में कहा, कौन है बाहर? माधवी ने जोर से कहा, बेटा मैं हूं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। माधवी की आवाज सुनकर अनंत और भी ज्यादा घबरा गया। उसने इस बार जबरदस्ती ही राविया को खुद से अलग किया और फिर जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक करते हुए राविया को कंफर्टर से ढक दिया और फिर तेज कदमों से जाकर दरवाजा खोला। सामने माधवी को देखकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, तो वहीं माधवी जल्दी से कमरे के अंदर आने लगी। उसे ऐसा करता देख अनंत ने आंखें बड़ी कर ली, तो वहीं माधवी ने अंदर आते ही सीधा बेड पर देखा जहां राविया आराम से सोई हुई थी। अनंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं रात को पार्टी में इसे किसने ड्रिंक करवा दी। जब तक हमारे पास थी तब तक तो ठीक थी, उसके बाद आपके साथ थी और उसके बाद पता नहीं किसके पास गई होगी जिसने इसे ड्रिंक करवा दी, इसीलिए ये उठ नहीं पा रही है। माधवी ने सीने पर हाथ बांधते हुए गहरी सांस भरी और फिर अनंत को देखते हुए बोली, ठीक है इसने ड्रिंक कर ली कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब ये सब बाहर किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहती मेरी बहू के बारे में कोई भी बातें बनाए और उसे एम्बेरस फील करवाया जाए। माधवी की बात सुनकर अनंत की आंखों में हैरानी आ गई। उसे माधवी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी राविया की परवाह भी करेगी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई थी। उसने जल्दी से कहा, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा इस बारे में। अनंत तो पहले से ही राविया की इस हरकत के बारे में किसी को नहीं बताने वाला था, क्योंकि उसे खुद बहुत शर्मा रही थी और अब तो उसे बहाना भी मिल गया था। वहीं माधवी ने जब देखा कि अनंत ने आसानी से उसकी बात मान ली है तो उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उसके पास गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ वैसे रात को इसने तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अनंत ने जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर माधवी मुस्कुरा उठी। वहीं तभी कमरे में एक और सर्वेंट आया जिसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक कॉफी मग था तो एक नींबू पानी का ग्लास, जिसे देखकर अनंत ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या आपको ये पहले से पता था मॉम? ये सुनकर माधवी हल्का सा हड़बड़ा गई। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता था, तभी तो मैं सुबह सुबह यहाँ आई हूँ कि कहीं तुम्हें रात को इसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया, क्योंकि मैं भी आई थी इससे मिलने और ये बहुत बहकी बहकी बातें कर रही थी। मुझे देखते ही समझ आ गया था कि इसने ड्रिंक कर रखी है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये वैसे भी फॉरेन कंट्री में रहने वाली लड़की है, इसके लिए ये सब कुछ आम बात होगी और इसने अपनी मर्जी से ड्रिंक किया होगा, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वैसे तो मैं इसके सामने बहुत ही स्ट्रिक्ट बनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे बदलना नहीं चाहती हूँ कि जैसी भी है वैसी ठीक है, और इसके जो शौक हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहती है मैं उसमें कभी दखलंदाजी नहीं करना चाहती। माधवी सब कुछ ऐसे बोल रही थी जैसे पता नहीं उसे राविया की कितनी परवाह हो और उसे राविया अपनी बहू के रूप में बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था, वो बस अनंत को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। वहीं अनंत खुश भी हो चुका था। उसने जल्दी से कहा, यू आर बेस्ट मॉम, बाकी कोई आपको कुछ भी कहे लेकिन आप सच में बहुत ज्यादा अच्छी हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोलकर उसने माधवी को गले लगा लिया, तो वहीं माधवी के चेहरे पर भी ट्रायम्फ स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद माधवी कमरे से वापस जा चुकी थी। उसके जाते ही अनंत ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक सुकून भरी सांस ली और फिर से घूमकर राविया की तरफ देखा जो बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह सो रही थी। माधवी और अनंत ने कितनी बातें कर ली थी उसके बाद भी उसने करवट तक नहीं बदली थी, शायद वो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में चली गई थी। अनंत ने कॉफी मग उठाया और फिर सोफे पर बैठ गया। वो बड़ी शिद्दत से राविया को देख रहा था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो उसे उठा दे। अनंत ने राविया को देखते देखते ही पूरी कॉफी खत्म कर दी और फिर उठकर फ्रेश होने चला गया। ड्रिंक करने के बाद अगर लंबी नींद ली जाए तो हेडेक कम होता है, बस यही सोचकर अनंत ने राविया को नहीं उठाया था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के कमरे में वेदांत गुस्से में प्रिया को घूर रहा था, क्योंकि आज वो फिर कॉलेज जाने के लिए नखरे कर रही थी। वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो टमाटो मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करता हूँ, तुम जैसा बोलती हो वैसा ही करता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें डांट लगाना भी कितना कम कर दिया है, उसके बाद भी तो मेरी एक बात नहीं मान सकती हो, बेटा ये अच्छा नहीं है। प्रिया ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, जो कल ड्रेस पहनी थी ना वो इतनी भारी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो पूरी कमर ही टूट गई उसे लहंगे को संभालते संभालते, और फिर रात को भी तो मुझे देरी से नींद आई थी, और अगर आज कॉलेज जाऊंगी तो पूरा दिन मेरा बस उबासियां निकालने में चला जाएगा, प्लीज बस आज आज की छुट्टी चाहिए मुझे। वेदांत ने एक गहरी सांस भरी और फिर प्रिया के करीब होते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लिया और फिर प्यार से उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कल से न बहाना न छुट्टी। प्रिया ने मुस्कुराकर वेदांत के गाल पर किस करते हुए कहा, हाँ पक्का, कल से मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। गाल पर किस करने के साथ ही प्रिया की नजरें वेदांत के गाल पर चली गई थीं, जिस पर अभी भी हल्के मेहंदी के निशान बने हुए थे। रात को वेदांत ने पहली बार अपने गाल पर मेकअप किया था, क्योंकि वो अपनी मेहंदी का निशान किसी को दिखाना नहीं चाहता था और वो मेहंदी ज्यादा भी नहीं दिख रही थी, इसीलिए थोड़े से मेकअप से ही वेदांत सबकी नजरों में शर्मिंदा होने से बच गया था। लेकिन अब वो नहा चुका था और वो मेहंदी फिर से थोड़ी थोड़ी दिखने लगी थी, जिसे देखकर प्रिया ने हंसते हुए कहा, अच्छी मेहंदी अभी भी दिखाई दे रही है आपके गाल पर, ऐसा लगता है मैं तो आपसे 7 जन्मों वाला प्यार करती हूँ। वेदांत ने एक बार तो गुस्से में प्रिया को घूरा, लेकिन फिर उसे खुद भी हंसी आ गई। उसने फिर प्रिया के हाथ को देखा, जिस पर मेहंदी का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसने प्यार से उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, और मैं हर जन्म वाला प्यार करता हूँ तुमसे टमेटो, देखा तभी तुम्हारी मेहंदी का रंग इतना गहराया है। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि क्या ये मेहंदी मेरे प्यार को डिसाइड करेगी, लेकिन अगर तुम्हें इसमें इतना यकीन है तो थोड़ा सा तो मैं भी कर सकता हूँ। प्रिया मन ही मन खुद को शाबाशी दे रही थी। उसने आखिरकार पढ़ाई वाले टॉपिक से वेदांत का ध्यान भटका ही दिया था और अब वो ऐसी इमोशनल बातें कर रहा है। इस चक्कर में तो कॉलेज का टाइम भी चला जाएगा और फिर तो चाहकर भी वेदांत प्रिया को कॉलेज नहीं भेज पाएगा। जहाँ पूरे हिमानी परिवार ने अच्छे से दिवाली मनाई थी, तो वहीं पार्थ की दिवाली कुछ अच्छी नहीं थी। पार्थ फिलहाल अपने कमरे में बैठा अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा था, क्योंकि कल हाथापाई में उसके हाथ पर बहुत गहरा जख्म आ गया था। अभी उसने अच्छे से पट्टी बांधी भी नहीं थी कि वहां तेज कदमों से चलती हुई रूही आ गई, जिसके हाथ में एक ट्रे थी। पार्थ ने उसे अपनी सर्वेंट ही समझ लिया था और बेचारी से घर का सारा काम करवाने लगा था। रूही ने मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, डेविल कहीं का, ना खुद दिवाली मनाता है और ना ही मुझे मनाने देता है, कल की रात तो मुझे हमेशा याद रहेगी।
कल रूही ने बहुत जिद की थी कि कम से कम उसे दिए जलते दिए जाएं, लेकिन पार्थ ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद अब खोला था और खोलते ही उसे सुबह का काम करवाने लगा था। लेकिन रूही ने जैसे ही कमरे में आते ही पार्थ को देखा, उसका सारा गुस्सा छुमंतर हो गया और उसकी आंखों में परेशानी आ गई। इतना सारा खून, डेविल क्या हुआ तुम्हें? इतना बोलते हुए वो तेजी से उसके पास आई और फिर अपने हाथ में पड़ी ट्रे को टेबल पर रखते हुए जल्दी से पार्थ के हाथ को पकड़ लिया।